ले सकेंगे। इसलिए सबको ये अभ्यास करना है। कामनाएं असंतोष पैदा करती हैं, बहुतों को करती हैं। छोटी छोटी कामनाएं, मुझे आगे नहीं बैठाया, हंसी की बात, सोफे पे नहीं बैठाया, चांस नहीं दिया, मेरा सम्मान ही नहीं किया, किसी ने पूछा ही नहीं। मान की सूक्ष्म अभिलाषा असंतोष पैदा करती है। और ऐसी स्थिति में कई अच्छे अच्छे लोग ज्ञान छोड़कर, भगवान को छोड़कर चले गए। ये सोचा ही नहीं, ये कितनी छोटी बात। और प्रभु मिलन और श्रेष्ठ स्थिति कितनी बड़ी बात है। हम अपने को संतुष्ट आत्मा बनाएंगे। कौन संतुष्ट रह सकता है? बहने बोलेंगी, बहने संतुष्ट कौन रह सकता है? सब प्राप्तियां हो गई हूं, संपन्नता आ गई है। संपन्नता माना भरपूरता। सब प्राप्तियां हो गई हो तभी इच्छा मात्रम अविद्या होती है, ये स्थिति बनती है, तभी तृप्त होती है आत्मा। अगर प्राप्ति नहीं हुई तो प्राप्तियों के पीछे मन इधर उधर भटक जाता है, चाहे वो मान के पीछे भटके। और जिसे ये अनुभव हो रहा हो, ये बाबा की बहुत सुंदर महावाक्य थे, कभी साकार में रात्रि क्लास में बाबा ने बोला था, मुझे याद रहा तब से। बच्चे तुम्हें तो स्वयं भगवान सम्मान दे रहा है, मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे? है ना मजेदार बात, बहुत बड़ी बात। मनुष्य आज मान देंगे, फटकार लगा देंगे। और क्या होता है, जब ऐसा छोटा छोटा मान मिलने लगता है ना, तो उसके मनुष्य अधीन भी हो जाता है। फिर वो ना मिले, मान लो दूसरों को दे दिए। अभी कोई सेंटर की बात कर रहा हूँ, क्लास में कोई अच्छा भाई है, बहुत सेवा करता है, बहुत अच्छा है, उसको मान दिया ही जाता है, वो तो देते ही हैं सब, ये तो हमारी परंपरा है। लेकिन कल कोई और अच्छा व्यक्ति आ गया, बड़े पद वाला आ गया, जो ज्ञान में तो थोड़े बड़े पद वाले ढीले डाले होते हैं ना, उसको सम्मान दे के आगे बैठाते हैं, पूछते हैं, ताकि वो ज्ञान में चल जाए, उसे स्नेह सम्मान की प्राप्ति हो। अब पहले वाले को परेशानी होने लगे, काम सारा मैंने किया, मान इन्हें मिल रहा है, हड्डियां हमने गला दी, पूछा इन्हें जा रहा है। मनुष्य के ये संकल्प चलते हैं, कोई विशेष कोई नई बात भी नहीं है, बड़ा नेचुरल रूप से चलते हैं। लेकिन इनसे भी परे कि हमें तो मान है ही, अब औरों को मिले, वो भी आगे बढ़े, बाबा के बच्चे बने, समीप आए। देखो आज तक आप सबने भी देखा होगा, कोई सम्मान पाकर बाबा के पास नज़दीक आते हैं, कोई प्यार पाकर बाबा के पास ज़्यादा आते हैं, कोई टोली खाकर ही ज़्यादा आते हैं। कई सुनाते हैं, हम छोटे थे, भोग खाने और टोली खाने जाया करते थे सेंटर में छोटे, फिर बड़े हो गए, शादी वादी हो गई, फिर आ गए तब बताते हैं, हम छोटे जाते थे। कोई ज्ञान लेकर जाते हैं, आते हैं समीप, ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ मिला ना, मुरली में था पालना, पढ़ाई बहुत बड़ी पालना है या नहीं? सबसे बड़ी पालना मुझे तो लगता है प्यार से भी बड़ी पढ़ाई। और खुद भगवान पढ़ाता हो और रोज जैसे हिंदी में कहावत है, उठते ही बच्चे को शहद चटा दिया जाए। माताएं करती होंगी छोटे बच्चों को, करते हैं ना। तो बाबा तो शहद तो छोड़ो, उठते ही सवेरे ही अमृत पिला देता है। तो ये पालना बहुत श्रेष्ठ है। कोई इस पालना से बाबा के पास आते हैं, तो कोई योग के सुखद अनुभवों को करके बाबा के समीप आते हैं। तो सबसे अच्छा है ज्ञान और योग। बाकी चीजें आधार बनती हैं, और अगर वो आधार निकल जाते हैं, वो चीज फिर नहीं मिलती। अब बच्चे बड़े हो गए, थोड़ा ही माँ बाप सदा ही प्यार देते रहेंगे उन्हें। अब पढ़ो, अब पढ़ाई से प्यार फिर नहीं मिलता तो संकल्प ज्यादा चलाते हैं। तो संतुष्टता का कोई भी आधार ना हो, आधार हो सर्व प्राप्तियां। और संतुष्टता हमारी, जो बाबा ने कल दो बार बोला, नेचुरल नेचर बन जाए। नेचुरल नेचर, सीधी सी बात, हमारी आदत बन जाए संतोष रहना, स्थूल में भी सूक्ष्म में भी। खाने को जो मिला संतुष्ट। अब बहुत लोग संतुष्ट होते नहीं ना, देखो यज्ञ में आते हैं। अब अलग अलग स्टेट से आते हैं हमारे पास। अब नेचुरल है उनका भोजन वहाँ का अलग, हमारे यज्ञ का भोजन अलग। हमने तो फिक्स किया है हर दिन का, भई ये बनेगा। अब बहुतों को वो अच्छा लगता, बहुतों को मिर्ची ज़्यादा चाहिए। एक स्टेट ऐसा है जहाँ के लोग हींग नहीं खाते, हमें पता ही नहीं था। अब वो बेचारे बस ऐसे वैसे ही गुजारा करके नीचे चले जाते थे। आखिर वहाँ की बड़ी दीदी ने मुझे 4-5 साल पहले कहा, हींग नहीं खाते उधर, इनको बहुत तेज वो आती है, आलू बॉयल ढूंढते रहते हैं, दही ढूंढते रहते हैं, तो असंतोष तो होगा ना। अरे मैंने कहा पहले बता देते, हींग का डब्बा उठवा दिया, खेल खत्म। इसमें मेहनत कौन सी है, हमें तो बचत ही हो रही है। फिर भी संतुष्ट रहकर आते हैं, भाई बाबा से मिलना है। और केवल बाबा से मिलने की बात नहीं, अब देखो आप सभी मधुबन में रहे हुए हो, यहाँ के वाइब्रेशंस में बहुत सुख है ना, है या नहीं? आत्मा बहुत सुखी हो जाती है यहाँ। अब कोई कहे हम तो 5 दिन रहे मधुबन में, बाबा तो आया ही नहीं, असंतुष्ट हो जाए, तो वो यहाँ के वाइब्रेशंस का सुख नहीं पा सकेंगे। अगर यहाँ के वाइब्रेशंस में रम जाएं, तो बाबा का मिलन तो हर घड़ी कर सकते हैं। बाबा क्यों आए, हम जाएं ना उसके पास, दोनों बातें संभव है ना। बाबा ने कहा कई बार, बाबा को बहुत बुला लिया, अब तुम आओ ना, बाबा तुम्हें बुला रहा है। मैं तो तुम्हारे बुलावे पर आ जाता हूं, तुम मेरे बुलावे पर आते ही नहीं। कई लोग सोचते हैं ना बाबा तो आता नहीं, ये गलत मान्यता है। कल कैसा लगा? उसकी पढ़ाई की पालना ही उसका मिलन है। अगर हम बहुत अच्छी स्थिति में बैठे, मुझे तो पहले मिलन का अनुभव है, मुझे भी हुआ और बहुतों ने बताया कि ऐसा लगा नहीं कि हम टीवी पर देख रहे हैं, आ गया है बाबा। वही वाइब्रेशंस पूरे हॉल में फैल गए, क्योंकि बाबा के दिन बाबा विशेष रूप से देने लगता है, सवेरे से चार्ज कर देता है वातावरण को फुल्ली। इसलिए संतुष्ट आत्मा, अब विचार करो सभी घरों में संतुष्ट हो सकते हैं। पहले बहनें कन्याएं बताएंगी, कुछ मिले ना मिले, रूस जाते हैं छोटे बच्चे, संतुष्ट होते नहीं, माँ मनाती रहती है, बाप तो कहता है रूसी है रूसी रहने दो, भूख लगेगी आप ही खा लेगी, रहती है ना। माँ कंसर्न रहती है, माँ को होता है भाई बच्ची भूखी है, खाना खा नहीं रही है, मनाती रहती है, वो नहीं मानती, जितना मनाएंगे उतने और नाराज होगी, इसलिए जो बुद्धिमान माता है वो छोड़ देती है। घंटे आधे घंटे में आप ही आ जाती है ठीक होके। संतुष्ट आत्मा बनना रहते हैं या नहीं? एक व्यक्ति को 1 लाख सैलरी मिलती है हर मास, तो भी कहता है, सैलरी माना तनख्वाह, पैसा मिलता है, तो भी कहता है भाई कुछ बचता ही नहीं, परिवार चलाने में सब खर्च हो जाता है। सोचता है डेढ़ हो जाए तो 50 बचा लेंगे। दूसरा व्यक्ति है जिसकी सैलरी 10,000 है केवल, परिवार चलते हैं। इच्छाएं अतृप्त हैं, हमारे पास हैं लोग बहुत आते हैं, हमें बताते हैं 15,000 हमारी सैलरी है, हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, ठीक ठीक चलता है, ऐसा वैसा खर्च तो है नहीं, अब सिंपल खाना होता है, घर अपना है 2 रूम का, चलता है परिवार। संतुष्ट आत्मा को कहीं भी कष्ट नहीं होगा। बाबा ने क्या कहा, खुद को भी प्रिय, औरों को भी प्रिय, और बाबा को भी प्रिय हैं संतुष्ट आत्माएं। जो संतुष्टि ना हो, हम तो सोचा करते थे जब मधुबन में यहाँ थे, भगवान को पाकर भी, उसकी पढ़ाई पढ़कर, उसका प्यार पाकर, उसकी पालना पाकर भी यदि कोई संतोष न हुआ तो कब होगा? फिर तो स्वर्ग में भी उसे संतोष हो सकता है, इसके पास महल सोने हीरो का, मेरे पास चांदी का ही है, होंगे तो वहाँ भेद, लेकिन असंतोष नहीं होगा, ईर्ष्या द्वेष नहीं होगी, सब तृप्त आत्माएं रहेंगी, संपन्नता रहेगी। संपन्नता का सीधा साथ ले लेना है भरपूरता। अब बाबा ने जो शुरू किया, अब सब सोचेंगे हम संतुष्ट हैं, लेकिन असली संतुष्टता, असली एक है स्वभाव की संतुष्टता, लेकिन बड़ी संतुष्टता है बाबा से सब कुछ प्राप्त हो रहा हो, शक्तियाँ, गुण, प्योरिटी, पुण्यों का खजाना, बाबा की दुआएं। अब एक छोटी सी बात ले लें, संगठन में कोई रहते, मान लो 3 लोग रहते हैं और तीनों के बीच में टकराव है, चाहे धन भी बहुत हो, घर बहुत सुंदर हो, कारोबार बहुत बढ़े चढ़े हों, लेकिन तीनों के बीच में टकराव है, संतुष्टता होगी? होगी? आते हैं मेरे पास ऐसे लोग कि हम 3 हैं, माँ बाप और मैं 3 हैं, हम तीनों के मुंह 3 दिशाओं में रहते हैं, कभी हम एक साथ बैठ के खाना भी नहीं खाते हैं, साहूकार बहुत, फैक्ट्री के मालिक हैं, सुखी नहीं है। कहाँ है ये सुख? सुख और खुशी जो दूसरों की ओर देखते हैं, इन दोनों के लिए वो कभी न सुखी होते न खुश होते, इसलिए अपने सुखों का, अपनी खुशी का आधार किसी को नहीं बनाना चाहिए। ध्यान देंगे सभी, ये हो तो खुशी मिले, ये अच्छा व्यवहार करे तो खुशी मिले, ये अवसर मिले तो हम खुश रहेंगे बहुत, ये हो तो खुश रहे, नो जो है जो नहीं है, इन दोनों से ऊपर हमारे पास क्या है? स्वयं, स्वयं भगवान, उसके द्वारा मिलने वाली खुशी और नशे की बहुत सारी बातें, उनमें रमण करने से हमारी खुशी बिना किसी आधार के रहेगी, निराधार। हमारी खुशी का कोई आधार नहीं रहेगा, वो कमजोर आधार निकला और खुशी भी गई। तो हमेशा सोचना है सुखी रहना और खुश रहना, दोनों हमारे अपने हाथ में है, इन दोनों को किसी और के हाथ में नहीं दे देना है। सोच लो, एक व्यक्ति बहुत भूखा है, दो दिन हो गए उसने खाना नहीं खाया, भूख बहुत लगी है। अब वो क्या सोचेगा, कैसा भी मिल जाए रूखा सूखा। वो ये नहीं सोचेगा चटपटा माल मिले, मिठाइयाँ मिले, कैसा भी मिल जाए। और खाते ही उसको किसी चार रोटी और अचार दे दी है, और खाते ही वो होगा ना बहुत खुश, बहुत आनंदित। और यदि वो सोच ले कहीं से ऐसा ऐसा मिल जाए, ऐसा ऐसा तो आप जानते हैं, तो कहाँ से आएगा। इसलिए इन सभी को स्वयं के अंदर से प्राप्त करना है, ज्ञान और योग के बल से प्राप्त करना है। अभी बात हुई थी कि खुद तो संतुष्ट रहना सहज है, परंतु भगवान को पता है काम भारी है थोड़ा। एक बार दादी प्रकाश मणि ने बाबा को कहा, क्लास में मुरली चल रही थी, ऐसे ही सामने बैठती थी ओम शांति भवन में, आ गई बिल्कुल नीचे बैठती थी दादी, तो दादी ने कहा, बाबा सबको संतुष्ट करना बड़ा कठिन काम है। तो बाबा ने तब उनको उत्तर दिया था, वो हम सब के लिए है, कि पूरी अपनी ओर से कोशिश करो, 95% आत्माएं संतुष्ट हो जाए, 5% की बाबा छुट्टी देता है, वो होंगे ही नहीं। देखा ना संगठनों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, संतुष्ट होते ही नहीं, जैसे कसम खाई है, तुम कुछ भी कर लो हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम संतुष्ट नहीं होंगे, हम खुश नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा 5% की छुट्टी है, है तो 95% भी भारी काम ना। बोलो माताएं, इस बच्चों को संतुष्ट किया जा सकता है? किया भी जा सकता है। इसमें एक बहुत अच्छा राज है, जितने हम स्वयं संतुष्ट होंगे उतने ही संतुष्ट कर सकेंगे। खुद में यह संतोष है, थोड़ी सी अशांति है, याद करो कल जोर से बोल देते हैं, तंग हो के बोलते हैं, दो शब्द थे बाबा के, तो असंतोष हो जाता है। तो अगर हम खुद संतुष्ट हैं, कल बाबा की मुरली में एक बहुत सुंदर बात थी इसी संबंध में, ऐसे वैसे लोग तो मिलते हैं, अब बहुत लोगों को अच्छी नौकरी मिल जाती है, लेकिन साथी ऐसे होते हैं बहुत अच्छी नौकरी है लेकिन कहते हैं भाई कर नहीं सकते, छोड़ देते, रिजाइन कर देते हैं, किसी एक साथी के कारण, किसी एक ऑफिसर के कारण जो दुर्व्यवहार करता है, मनुष्य अपनी अच्छी नौकरी छोड़ने को विवश हो जाता है। ये हमारा व्यवहार और हमारे बोल बहुत हमारा बड़ा खजाना है, ये हमारी ब्यूटी है, जीवन की सुंदरता है या नहीं। कोई व्यक्ति कैसा भी हो लेकिन व्यवहार कुशल ना हो तो कोई भी उसके साथ रहना नहीं चाहेगा, या कोई भी उसके साथ रह के खुश नहीं होगा, कई बार उसके साथ रहना ही पड़ता है। भाई काम कर रहे हैं, मान लो हम यज्ञ में हैं, सेवा में हैं, आप काम कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, लेकिन व्यवहार सुंदर हो हमारा। तो वाचा के लिए बाबा ने कल कई बातें कही, और बहुत सुंदर बात थी, सब अंडरलाइन कर लें अपने जीवन में, मैंने भी कल एक्स्ट्रा अंडरलाइन कर लिया था, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है। शुभ कामना और शुभ भावना रखना नेचुरल नेचर बन जाए, हमारी आदत बन जाए, शुभ भावना शुभ कामना रखना, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जब गलत करता है और बार बार करता है तो भावनाएं बदल ही जाती हैं, और संसार में आज देखें सभी, मनुष्य की भावनाएं जितनी अब बिगड़ी हैं पहले कभी नहीं बिगड़ी थी। इसका एक बड़ा कारण हो गया स्वार्थ, और स्वार्थ भी किस चीज का बोलो, ये उत्तर भी माताओं से आना चाहिए। स्वार्थ भी किस चीज का, उसको ऐसा भी कह सकते हैं मारा मारी है इस चीज की, परिवारों में, संबंधों में, घरों में। धन ही सब कुछ है, बाबा ने तो कहा मन मना भव, और लोग कहते हैं धन धना भव, ठीक है। स्वार्थ, एक केस तो रोज आता रहता मेरे पास भी, भाई जी दो भाई बड़े प्यार से रहे जिंदगी भर, अब जब बंटवारे की बात आई लड़ाई हो रही है, सारा प्यार खत्म हो गया है। सोचते हैं बस अधिक से अधिक मुझे मिल जाए, दूसरे को कम मिले। चलो करो विचार भाई, सभी संतुष्ट आत्माएं ये करेंगी? माताएं, फिर मैं कह रहा हूं बुरा ना मानना माताएं, उत्तर माताओं की ओर से आना चाहिए। आपको ज्यादा धन मिल जाए, मान लो देवर जेठ, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बताता हूं, आज ही कोई केस आया। अब देवर तेज तराक, हिसाब किताब उसके हाथ में, चाहता है जेठ को कम से कम और मुझे सबसे ज्यादा। जेठ और परिवार ज्ञान में है, सोचता है ज्ञान वालों को क्या चाहिए, बात तो ठीक है, भगवान मिल गया उन्हें शायद ये पता होता है उन्हें कि इन्हें भगवान मिल गया, पैसा क्या करेंगे। संघर्ष होता है। मुझे जो कहना है वो ये है कि अगर मान लो उसने ज्यादा पैसा ले लिया और बड़े को कम दिया या छोटे को कम दिया, वो पैसा क्या करेगा? पैसा तो आ गया, लेकिन पैसे के साथ और क्या आया? बद्दुआएं आ गई। दुआएं बहुत बड़ा खजाना है, और वो बद्दुआएं उनको कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाएगी, या तो बच्चे ऐसे वैसे निकलेंगे शराबी, बुरे संग में पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, मोबाइल पे रात दिन, और यह पैसा जाएगा बीमारियों में। ये प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है, कैंसर हो गया, लग गए 25 लाख और गए, 25 लाख भी गए और वो भी गए, अब बंटवारे में गड़बड़ की थी। इसलिए सभी भाई बहने जो भी सुनते हो, धन ही सब कुछ है, मुझे ज्यादा मिले दूसरे को कम मिले, इस चक्रव्यूह में उलझना नहीं है। कहेंगे क्या उपदेश दे रहे, लोग कहेंगे ना ये सब उपदेश देने वाले बड़ा उपदेश देते हैं, उपदेश नहीं, कर्मों की गति। मुरली में आया पीछे, कर्म की गुह्य गति के भी ज्ञाता बनो, याद है अभी तो आया, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। ये कर्म गति से कोई बच नहीं सकता संसार में। दूसरों का जरा भी हमने ले लिया वो देना पड़ता ही है। एक सुंदर बात बीच में बता देता हूं, कभी भी सवेरे शाम, कभी भी 6 बजे 5 बजे सवेरे, उन आत्माओं को शुक्रिया किया करो जिन्होंने जन्म जन्म हमें मदद की है। हमें पता नहीं वो कौन थे, कहां है अब, लेकिन हम दिल से शुक्रिया करें जिन्होंने जन्म जन्म हमें बहुत हेल्प की, उनको सच्चे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अनुभव होने लगेगा वही आत्माएं अब भी तो हमारे आसपास होंगी, वो मदद देने के लिए फिर से नजदीक आ जाएंगी। आपको अनेक मददगार दिखाई देने लगेंगे, आपको ये नहीं लगेगा हमारा तो कोई नहीं, ये सब बहुत सारी आत्माएं हमारे साथ हैं, ये लगने लगेगा। ये बहुत सूक्ष्म चीज है। शुक्रिया करना, धन्यवाद देना, ये बहुत ही एक उत्तम प्रक्रिया है। प्रकृति को धन्यवाद, बाबा को दे देंगे तो सभी आ जाएगा उसमें, परंतु अलग अलग को भी करना है। प्रकृति को धन्यवाद, साथियों को धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस जन्म में मदद की हो, आगे बढ़ाया हो, सहयोग दिया हो, उन सबको धन्यवाद। भोजन जब रोज खाएं तो एक बार भोजन को भी धन्यवाद। उगाने वाले, पैदा करने वाले, अब भोजन जो हम खा रहे हैं वो कितनी चीजों से गुजरा है। किसी ने गेहूं पैदा किया, मेहनत की किसान ने, बाजार में आया, कितनों के हाथ से गुजरा होगा, फिर हमने उसको आटा चक्की में भेज दिया या ऐसे ही खा लिया। फिर अब रोटी बनाने में देखो क्या क्या करते हैं, सबको पता है कितने लोग जुट गए। सब्जी हम खाते हैं रोज, कितनी प्रक्रिया से सब्जी हमारे घर में पहुंची है। शुक्रिया कर दे सबको, प्रकृति को, बाबा को, और जो हमें मदद कर रहे, भोजन खाते हमेशा अंडरलाइन करेंगे, मुरली से है, साकार मुरली से, ये ब्रह्मा भोजन दुख भंजन भोजन है। जब भी भोजन सामने आए, बाबा आपका ये दिया हुआ ब्रह्मा भोजन दुख भंजन भोजन है, हमारे सभी दुखों को नष्ट करेगा, ये संकल्प कर लिया करो। जितने सुंदर संकल्प हम हर जगह करेंगे जीवन में, देखो सुंदर संकल्पों का महत्व है। तुमने हमें सुंदर ज्ञान दिया, तुमने हमें सुंदर जीवन दिया, तूने हमें जीवन जीना सिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया। दो चार संकल्प अपने पास रखकर शुक्रिया अदा करो, बड़ा मजा आएगा। अब दूसरा व्यक्ति गड़बड़ करता है, आ जाए बाबा की उस बात पर जिस पर बाबा ने ज्यादा फोकस किया, क्योंकि हमारी सेवाओं की वृद्धि का आधार भी व्यवहार ही है। अगर टकराव है तो वाइब्रेशंस बहुत कमजोर, बहुत निगेटिव, जो किसी को भी आकर्षित नहीं करते, सेवा स्थान के हो जाते हैं। एक सुंदर सी बात याद आ गई, अभी इसी ग्रुप में एक बहन आई है, वो माता, उन्हें गीता पाठशाला खोली, उसकी गीता पाठशाला में मेरे पास आती रहती है। 200 भाई बहने हो गए, वाह बड़ी अच्छी बात तुम्हारी, तो 3 गीता पाठशाला खोल दी वहीं आसपास, तीनों में मिलके 200 हो गए। मैं देखा उसको भी और पूछा उससे, वाइब्रेशंस का बहुत अच्छे हैं, पर कहा एक बहन मेरे पास आई है, अब मैं सीधा ही बोल दिया, बोल की बड़ी कड़वी है तो उस पर ही मुरली चल गई कल, उन्हें कल सवेरे तो बताया था, फिर आज उसको लाई, मैंने कहा क्या अच्छा लगा, उसने फट से बोला, बोल पे जो बाबा ने बोला ना वो मेरी बात है, कहा बहुत अच्छी बात है। जो मनुष्य अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता हो, जो मनुष्य अपनी कमजोरियों को पहचानता हो, और अब उसे दूर भी करेगी, दूर करता हो, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। तो अपनी कमियों को स्वीकार करना एक निर्मल चित्त की पहचान है, नहीं तो लोग स्वीकार नहीं करते, गुस्सा भी आता है, कहते आएगा ही, ये समस्या है, वो है, बच्चे सुनते नहीं, फलाना काम नहीं करता, आएगा ही। तो स्वीकार करा दिया अपने को तो छूटेगा नहीं, फिर स्वीकार करना, अपनी भूलों को का पता होना और फिर उनको चेंज करने का प्रयास करना, तो बाबा बहुत मदद कर देता है। तो बोल, जोश के बोल, आवाज के बोल। एक और आत्मा आई आज मेरे पास, ये सब सुन के कहा क्या करूं, 5-7 रहते हैं हम एक साथ, अब छोटी छोटी कन्याएं हैं, गड़बड़ करती रहती हैं, ध्यान नहीं देती, सामान खराब हो रहा फेंक दो। मेरे को थोड़ा गुस्सा आता है, उनको जोर से बोलती हूँ, बाबा ने कल कहा जोर से न बोलो। बाबा ने तो कहा तुम्हारी बात भी ठीक है, पर उन्हें समझाया करो प्यार से, सुनती नहीं। देखो ये समस्या, सुनाने वालों की समस्या है कि वो सुनती नहीं। मैंने कहा तो जब आवेश से बोलती हो तो सुनती हैं, अब ये सोचने लगी सुनती तो तब भी नहीं, तब तो सुनती हैं अगले दिन फिर वही, तो कौन सा मार्ग निकाले बीच का। अच्छी बात अच्छे शब्दों में कहना, अच्छे समय पर कहना। उसमें क्या होता है, जो बड़ा होता है उसमें क्या होता है, बड़े में मैं मालिक हूं, इंचार्ज हूं, तो उनको जरा रोब से कहा जाता है। ईगो कहीं ना कहीं थोड़ा अहम कहने वाले के अंदर रह जाता है, इसलिए दूसरों पर असर कम होता है। उस दिन तो हो जाएगा, फिर नहीं होगा तो बाबा ने विधि बताई है, याद करो, बहुत अच्छी अच्छी विधि बताई। सकार में और अव्यक्त मूल्यों में आत्मा देखकर, खुद को आत्मा समझते हुए अगर तुम दूसरों को कुछ कहोगे तो उन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब वही यदि उनको रियलाइज करा दे कि भाई ये यज्ञ का सामान है, किसी ने दिया है, हो सकता है किसी की कमाई बहुत कम हो, उसने दिया हो प्यार से, तुम इसे वेस्ट करोगे तो तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। तो समझाने से वो समझेंगे, मैंने बात कही उन्हें आज, कहा ये तो वो समझते ही नहीं, तो किसकी बात समझेंगे। आत्मिक दृष्टि का लंबे काल का अभ्यास और स्वमान में स्थिति, स्वमानधारी होने से हम दूसरों को उनकी गलती रियलाइज करा सकते हैं अच्छे शब्दों में, ताकि संबंध भी न बिगड़े। अगर ऐसे वैसे बोला जाता है तो दूसरे के अंदर में डर भी पैदा हो जाता है, और डर भी अच्छा नहीं होता। हमारे संगठनों में यदि डर का माहौल है वो भी सेवा को बढ़ने नहीं देगा, और डर के कारण कईयों में मानसिक रोग पैदा हो जाएंगे। इसलिए न घरों में बच्चों को डरा के रखना है, इसमें भाई ध्यान देंगे बहुत ज़्यादा, बच्चों को कोई कोई डरा के रखते हैं, होता है या नहीं भाई बताओ। डराने से काम नहीं चलेगा, डराने से क्या होता है, उनकी बुद्धि पर एक अननेसेसरी दबाव रहता है, उनको खुशी नहीं रहती। मान लो बाप है ही बहुत पावरफुल, गुस्सा भी बहुत है और सबको दबा के रखता है, तो बच्चे जो दबेंगे क्या नुकसान होगा, उनके अंदर की कई योग्यताएं भी दब जाएंगी, और इसका इफेक्ट उनके भविष्य पर बहुत ज्यादा आएगा। इसलिए कुछ कहना भी है, प्यार भी बहुत करना है अपने बच्चों को, तो ताकि उनकी पर्सनालिटी का, उनके व्यक्तित्व का विकास हो जाए बहुत अच्छी तरह। तो हम ये ध्यान देंगे कि न जोश के शब्दों, न अहम से भरा हुआ हमारा व्यवहार हो कहीं भी, बहुत ध्यान देने की बात है। मान लो यहाँ एक डिपार्टमेंट है, उसका कोई इंचार्ज है और उसमें अहम है, तो उसके व्यवहार में अहम के वाइब्रेशंस आएंगे ही, उससे उसका संगठन टूटेगा, क्योंकि एक का अहम दूसरे के अहम को जागृत करता है। या तो दबाव में रहेंगी आत्माएं, उनका सब कुछ दब जाएगा, या एक ना एक दिन विस्फोट हो जाएगा। इसलिए प्यार, अलौकिक प्यार, स्वमान, आत्मिक दृष्टि, और सबको याद है बाबा की ये बात, तो तुम्हारी वाणी में योग का जवहर हो, कोई जौहर कहते हैं, जवहर कहते हैं, वाणी में योग का प्रभाव हो बहुत अच्छा, तो सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बाबा कितना प्यार करता है बच्चों को, हैं? मैं सोचा था माताएं बहनें बोलेंगी फट से, लाडले। और क्या सुंदर सब था, राज राज दुलारे, ये जरा सुंदर, अति सुंदर शब्द है। राजा बच्चे हो गए ना, उसमें राजा भी आ गया, लाडले प्यारे मीठे अच्छे, ये तो हैं ही शब्द। देखो भगवान प्यार की नजर से देखता है हमें और सिखाता है, जैसे मैं तुम्हें बहुत ऊंची नजर से देखता हूँ, तुम भी वैसे ही एक दूसरे को देखो। और इसका बहुत सुंदर अभ्यास है संगठनों में, वो सभी को करना चाहिए। हम सब कौन बैठे हैं यहाँ, स्वमान बताओ, हम सब कौन हैं, आगे बढ़ो, स्वमान, इष्ट देव देवियाँ हैं या नहीं हैं, सभी या पीछे वाले नहीं हैं, हैं। जब हम मंदिरों में पत्थर की मूर्ति थे तो एक दूसरे को कितने सम्मान की दृष्टि से देखते थे, देखते थे या नहीं, देवी आ बहुत दर्शन हो गए, बाहर खड़े हैं, घंटों खड़े हैं, लाइन लगाए, दरवाजा खोले, देवी के दर्शन हो जाए, सम्मान था ना ये। तो जब पत्थर थे जड़, तब तो बहुत सम्मान दिया, प्यार किया, और जब प्रैक्टिकल में आ गए, ये देवी ऐसी है, ये देवी ऐसी है, तो पत्थर ही अच्छे, ठीक है नहीं। हम सभी को इस नजर से देखें, सब महान आत्माएं, हमारा परिवार ही इष्ट देव देवियों का है, ये परिवार महान आत्माओं का है। मुझे बाबा की साकार मुरली में एक शब्द बहुत अच्छा लगता है, तुम भगवान के परिवार में बैठे हो। महादेव को दिखाते हैं ना, पार्वती और दो बच्चे, उसका परिवार देखने में ही अच्छा लगता है, वाह, लोग तो भगवान मानते हैं ना, भगवान का परिवार। पर भगवान का परिवार चार लोगों का थोड़े होगा, वो तो आजकल है, हम दो, हमारे दो, उसके परिवार में तो सब हमारे। हम भगवान के परिवार में हैं, महान आत्माओं का ये परिवार है, इस देव देवियां बैठे हैं, एक दूसरे को इस नजर से देखो, सब कुछ बदल जाएगा। करके देखना अपने अपने संगठनों में, जो बहनें टीचर हैं, तीन आप रहते हैं एक साथ में, तीनों एक दूसरे को इस नजर से देखो, ये सब इस देवियां हैं, हम इस देवियां हैं, कभी आप पूरी कर रहे हैं, हम सब संपूर्ण बनेंगे। आप अपने लौकिक परिवार में भी सबको इस नजर से देखना, हमारे परिवार में पांच छह लोग हैं, ये इस परिवार में पुण्य आत्माएं हैं। करके देखो, तीन दिन करके देखो, आपको ही जो सुख मिलेगा वो बड़ा अनुपम होगा। हमारे परिवार की हर आत्मा बहुत भाग्यवान है, भाग्यवान बच्चों ने जन्म लिया हमारे घर में, हमारे घर में ये सभी आत्माएं बहुत महान हैं, महान बन जाएंगे सब, क्योंकि इसको कहते हैं वृत्ति। इस वृत्ति से वातावरण बनता है, और जैसे वातावरण में बच्चे रहेंगे वैसा ही उनका निर्माण हो जाएगा। तो ये बाबा ने छोटी छोटी प्रैक्टिस और अति सुंदर प्रैक्टिस हम सबको सिखाई हुई हैं। तो सभी मुरली सुन के संतुष्ट मनिया, जहाँ भी कहीं गड़बड़ हो पूरा कर लें, और बोल पहली लाइन फिर से, बोल हमारे ऐसे हो जैसे पुष्पों की वर्षा हो रही है, ऐसे बोल चित्त को शीतल कर दे, जैसे भगवान के बोल वैसे ही उसके बच्चों के बोल। ओम शांति।